अनेक अवतारों में प्रकट होते हैं इस भौतिक सृष्टि में, अपने बहुत ही मधुर लीलाओं को प्रकाशित करते हैं, भक्तों को आकर्षित करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, धर्म की स्थापना भी करते हैं और पुनः स्वधाम लौट के जाते हैं। तो भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं अपने विविध रूपों में, जैसे कि वो उन्होंने भगवद गीता में घोषणा की है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान हर युग में ऐसे प्रकट होते रहते हैं और भगवान का हर एक अवतार दिव्य होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई भौतिक रूप धारण करके आते हैं। भगवद गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अजो विसन्नत्यय आत्मा भूतानां ईश्वरो विसन् प्रकृतिं स्थानाधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा हूं फिर भी मैं प्रकट हो जाता हूं, मैं अव्यय हूं मैं अजन्मा हूं फिर भी मैं प्रकट हो जाता हूं इस भौतिक सृष्टि में, और मैं सारे प्राणियों का स्वामी हूं, मैं ईश्वर हूं फिर भी मैं इस प्रकृति के भीतर प्रकट हो जाता हूं, प्रकृति स्वामिष्ठाय संभवामि, और मैं मेरी अंतरंगा शक्ति आत्ममायया, मेरी आत्ममाया शक्ति से, मेरी आध्यात्मिक शक्ति से मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान का रूप उनके नाम में सच्चिदानंद है, चिन्मय है, भगवान का एक रूप है। ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार है और इस धरातल में या इस भौतिक सृष्टि में जब प्रकट होते हैं तो उस समय कोई एक रूप धारण करके आते हैं, जो कि एक माया का रूप है, भौतिक तत्वों का, इन जड़ पदार्थों का रूप है, ऐसा नहीं है। ऐसा भगवद गीता का सिद्धांत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट घोषणा करते हैं गीता में कि वो एक व्यक्ति है और ऐसा नहीं है कि अव्यक्त से वो व्यक्ति बने हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। तो कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनकी धारणा है कि मेरा मूल स्वरूप अव्यक्त है, निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है, और ऐसे अव्यक्त निराकार अवस्था से मैं एक व्यक्ति का स्वरूप स्वीकार करता हूं। तो ऐसा जो लोग मानते हैं, मन्यन्ते माम अबुद्धयः, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे जो लोग मानते हैं उनका ज्ञान ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। परम भाव अजानन्तो, मुझ परम सत्य भगवान श्री हरि को वो नहीं जानते हैं। ममाव्ययम् अनुत्तमम्, मैं अव्यय हूं और अनुत्तमम् बहुत सूक्ष्म हूं, चिन्मय हूं, आध्यात्मिक हूं, और मेरा रूप, मेरा आकार भी इसी प्रकार से चिन्मय है, क्योंकि हम इस जगत के रूपों को देखकर आदि हैं और यहाँ के रूपों को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हर एक रूप नश्वर होना चाहिए। तो ये धारणा हम भगवान के ऊपर आरोपित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का देह हमारे जैसा देह नहीं है। तो भगवान अपने विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण अवतार श्री नरसिंह देव भगवान का है। भगवान नरसिंह देव और उनके परम भक्त प्रहलाद महाराज के बारे में श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंध में पूरे 10 अध्याय हैं और इनके पीछे एक संवाद है। क्यों शुकदेव गोस्वामी जी ने हिरण्यकश्यप, नरसिंह देव भगवान और प्रहलाद महाराज की लीला का वर्णन किया? जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा राजा परीक्षित को, जबकि राजा परीक्षित को केवल 7 दिन बचे थे जीने के लिए। अपने राज्य को त्याग कर राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर गए। वहां उपवास करके वो ये जानना चाहते थे कि जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार में खड़ा है उसे क्या करना चाहिए, किनकी उपासना करनी चाहिए, किनके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अनेक ऋषियों ने उनको उत्तर दिए परंतु वो संतुष्ट नहीं हुए। जब शुकदेव गोस्वामी वहां आ पहुंचे तो उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि आपको भगवान श्री हरि या श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत सुनाना आरंभ किया और ऐसे अनेक भगवान के अवतारों का वर्णन करने के बाद जब राजा परीक्षित ने यह सुना कि कई बार भगवान विष्णु या कृष्ण प्रकट होते हैं इस भौतिक सृष्टि में, देवताओं की ओर से वो आकर असुरों का विनाश करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, तो परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी जी से कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे मन में एक संदेह है। संदेह ये है कि विष्णु या कृष्ण तो भगवान है, वो परम सत्य है, और जो व्यक्ति ऐसे आध्यात्मिक स्तर में स्थित होते हैं जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के उद्गम हैं, सभी के स्वामी हैं, उनको पक्षपात नहीं करना चाहिए। अब ऐसे मुझे लगता है कि हर बार भगवान विष्णु आकर असुरों का और राक्षसों का वध करते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं, तो ये तो मुझे सरासर पक्षपात लग रहा है। वैसे जो राक्षस और असुर हैं वो भी तो भगवान के अंश हैं, तो भगवान को उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि भगवान आके राक्षसों का ही वध करते हैं, कभी देवताओं का वध नहीं करते हैं या देवताओं की हत्या नहीं करते हैं? ये संशय मेरे मन में है। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़े सोच समझकर आपने ये प्रश्न किया है, और ये एक विचार करने योग्य और चर्चा करने योग्य प्रश्न है। और ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न किए जाते हैं उनके द्वारा हमारे चित्त का शुद्धिकरण हो सकता है और हम भगवान को अच्छी तरह से समझ के उनकी भक्ति कर सकते हैं। तो हे राजन, आपको जानना चाहिए कि भगवान कौन है। भगवान इस ब्रह्मांड के कोई, इस भौतिक सृष्टि के कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान तो परम शक्ति है। उनका देह हमारे जैसा देह नहीं है, भौतिक पदार्थों से बना हुआ देह उनका नहीं है। हम जो यहाँ इस भौतिक सृष्टि में रहते हैं, इस भौतिक सृष्टि के या प्रकृति के कड़े नियमों के अधीन सदैव रहते हैं। जो व्यक्ति इस भौतिक सृष्टि में रहता है वो काल और प्रकृति के चंगुल में फंसा हुआ रहता है। अपने आप को शरीर समझ के वो अपने माया जाल, भगवान के माया जाल में फंस के द्वंद्वों का अनुभव करने लगता है। ऐसे द्वंद्वों में आके वो सोचने लगता है कि ये सुख है, ये दुख है, ये हार है, ये जीत है, लेकिन भगवान को ऐसे द्वंद्वों से कुछ लेना देना नहीं है। ये 3 गुणों से बनी हुई जो प्रकृति है, सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण, जब सत्व का प्राधान्य हो जाता है उस समय सत्व गुण के जो अधीन देवतागण होते हैं उनका विजय होता है। जब रजगुण का प्रभाव बढ़ जाता है तो जो असुर हैं, जो रजगुणी होते हैं, उनकी जीत होती है। और जब तमोगुण का प्राधान्य हो जाता है तो राक्षस, जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनका विजय हो जाता है। तो ये तीन गुणों की स्पर्धा सदैव चलती रहती है इस भौतिक सृष्टि में। कभी सत्वगुण, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, इनका प्राधान्य होते रहता है। उतार चढ़ाव इनका होते रहता है। जब सत्वगुण प्रभावशाली हो जाता है तो देवताओं की जीत होती है। कभी रजोगुण प्रभावशाली हो जाता है तो असुरों की जीत हो जाती है। और तमोगुण का प्रभाव होने पर राक्षस प्रभावशाली बन जाते हैं। तो इसमें कोई भगवान का दोष नहीं है। हर एक प्राणी जो इस भौतिक जगत में है वो इन तीन गुणों के अधीन होने के कारण उसे भी हार जीत का सामना करना पड़ता है। और ये इस पर निर्भर होता है कि तीन गुण जो है वो कैसे चल रहे हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ काल शक्ति का प्रभाव सबके ऊपर है। कोई भी काल के प्रभाव से बच नहीं सकता है। तो चाहे वो बड़े बड़े व्यक्ति क्यों न हो, देवता भी क्यों न हो, वो भी काल के अधीन है। तो काल और प्रकृति के संयोग से कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी का हार होता है, ये तो चलता है। भगवान इसमें पक्षपात नहीं करते हैं। पक्षपात वो व्यक्ति करते हैं जो द्वंद्व की दुनिया में फंसे हुए हैं, जो शत्रु और मित्र में भेद करते हैं। परंतु भगवान का शरीर दिव्य होने के कारण वो इन द्वंद्वों से परे है। कौन व्यक्ति है जो द्वंद्वों के अधीन होता है? केवल वो व्यक्ति जिसका एक भौतिक शरीर है, जड़ पदार्थों से बना हुआ शरीर जो नश्वर है। ऐसा ही व्यक्ति जो अपने आप को माया के प्रभाव में आके शरीर समझता है, मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं वो सब मेरे हैं, और ये सारी जो वस्तुएं हैं जो मेरे पास में हैं ये मेरी संपत्ति है। जो अज्ञानवश ऐसे सोचता है, केवल ऐसा व्यक्ति द्वंद्वों के अधीन होकर मित्र, शत्रु, सुख दुख, मान अपमान आदि में भेद करता है। इसलिए ऐसा ही व्यक्ति पक्षपात कर सकता है और करता है अवश्य। परंतु भगवान का कोई भौतिक देह नहीं है और न भगवान इन तीन गुणों के अधीन है, न भगवान काल के अधीन है। काल भगवान की शक्ति है। भगवान गीता में कहते हैं, अहम एव अक्षयः कालो, मैं ही अक्षय काल हूं। काल हर वस्तु का और हर व्यक्ति का अक्षय कराता है, परंतु भगवान स्वयं अक्षय है क्योंकि वो मूर्तिमान काल है। काल ही उनकी शक्ति है। भगवान शक्तिमान है और शक्तिमान के अधीन सदैव उनकी शक्ति रहती है। उसी प्रकार से प्रकृति भी सदैव उनके अधीन होती है। मया द्रक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। तो भगवान भी कभी प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं। तो भगवान का न भौतिक शरीर है, न वो काल प्रकृति के अधीन है, इसलिए वो द्वंद्व में कभी पड़ते नहीं है। तो उनके लिए कोई पक्षपात का सवाल ही नहीं है। भगवान समदर्शी होते हैं, सबका भला करते हैं। जब वो असुरों का और राक्षसों का वध करते हैं उनका भला होता है, उनकी भलाई के लिए ही भगवान ऐसे करते हैं। और जब भक्तों की रक्षा करते हैं वो भी भक्तों की भलाई के लिए करते हैं। तो जो भी कुछ भगवान करते हैं वो भलाई के लिए ही करते हैं। ये इसलिए है कि वो ऐसे आध्यात्मिक स्तर में हमेशा स्थित होते हैं। और इसके बारे में हे राजन, एक संवाद आपको मैं सुनाना चाहता हूं जो कि श्री नारद देव और महाराज युधिष्ठिर के बीच में। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया था भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। बहुत धूमधाम से ये यज्ञ मनाया गया, श्री कृष्ण को अग्र पूजा का सम्मान दिया गया। परंतु वहां यद्यपि उपस्थित प्राय सभी लोगों ने श्री कृष्ण का आदर इस तरह से किया उस राजसूय यज्ञ में, फिर भी थोड़े बहुत लोग ऐसे थे जो कि बहुत ईर्ष्यालु थे और वो श्री कृष्ण से द्वेष करते थे। वो नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण इस प्रकार से सम्मानित हो। तो ऐसे द्वेषी व्यक्तियों में से प्रमुख थे शिशुपाल। तो शिशुपाल ने बहुत सारे अपशब्द कहे भगवान श्री कृष्ण को भरी सभा में। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। पांडव भी वहां उपस्थित थे, भीम अर्जुन आदि श्री कृष्ण की निंदा इस प्रकार से सुन के बहुत क्रोधित हो गए और वो अपने अस्त्र उठाकर शिशुपाल की हत्या करना चाहते थे, परंतु इशारे से भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोक दिया। जब शिशुपाल ने अपने अपशब्द आगे बोलकर एक सीमा पार की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़कर शिशुपाल की गर्दन काट दी और उस भरी सभा में सबके सामने शिशुपाल के शरीर से उसकी आत्मा निकली और वो सीधे भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होने वालों में से महाराज युधिष्ठिर भी थे, तो उन्होंने बाद में भरी सभा में ही अन्य ऋषियों के सामने नारद जी से ये महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि हे मुनिवर, मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं थोड़ा भ्रमित हूं। ये बताइए कि शिशुपाल इतना दुष्ट व्यक्ति था, इतना द्वेषी था, इतनी घृणा और द्वेष करता था भगवान कृष्ण से, और भगवान ने जब उसकी हत्या कर दी सबके सामने, उसकी आत्मा सीधे भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गई, उसे सलयुज मुक्ति प्राप्त हो गई। ऐसे देखा जाता है और सुना भी जाता है शास्त्रों से कि भगवान के निराकार ज्योति में लीन होना या उनके दिव्य शरीर में लीन होना, जिसे सलयुज मुक्ति कहते हैं, ये तो ऐसे ज्ञानी योगियों को तपस्वियों को प्राप्त होता है जिन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की है, अपने मन और इंद्रियों को वश में किया है और भगवान का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन यहां ऐसे देखा गया कि शिशुपाल, जिसको कि नरक प्राप्त करना चाहिए था, दुष्ट राजा वेन की तरह जिसने भगवान के प्रति बहुत अपराध किए, भगवान से को अनेक अपशब्द कहे, भगवान की सेवा को रोक दिया अपने राज्य में, तो ऐसे महाराज वेन जो नरक को प्राप्त हुए, तो शिशुपाल को भी ऐसे नरक जाना चाहिए था। तो शिशुपाल को नरक जाने के बजाय भगवान के धाम में मुक्ति की अवस्था मिली, ये तो बड़े आश्चर्य की बात लग रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब हम दो बातें इस संदर्भ में बताना चाहते हैं कि आत्मा इस समय भगवद गीता के अनुसार इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के पड़ी है और यही हमारे सारे दुखों का कार्य है। दुख इस भौतिक देह के कारण होते हैं। जब तक ये शरीर है जो जड़ पदार्थों से बना हुआ है, तब तक जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी होगी ही होगी, जिनसे तरह तरह के कष्ट उत्पन्न होते। साथ साथ में जब तक ये भौतिक शरीर है, ये मान अपमान इत्यादि ऐसी भावनाएं अवश्य रहेंगी जो व्यक्ति को कष्ट प्रदान करेंगी। तो जो व्यक्ति देहधारी है इस दुनिया में, उसे कष्ट तो मिलना ही है। तो यदि इन कष्टों का निवारण हमेशा के लिए करना है तो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहिए। छूट के कहां जाएंगे? हमें भगवान के धाम में जाना है। तो एक प्रकार की मुक्ति है भगवान के दिव्य शरीर के तेज में, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसमें लीन हो जाना। और दूसरी प्रकार की मुक्ति है जो वास्तविक मुक्ति है, जो जिस मुक्ति को भक्त प्राप्त करते हैं, वो है भगवान के वैकुंठ जगत में, वैकुंठ लोगों में एक स्थान प्राप्त करना, भगवान के सानिध्य को प्राप्त करना और भगवान की सेवा में सदैव रत रहना और भगवान की लीलाओं में शामिल हो जाना। जो भगवान की सेवा करके उनके चरणों के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करते हैं, वो वैकुंठ जगत की प्राप्ति करते हैं। उनको भगवान के दिव्य शरीर में या उनके शरीर के तेज में लीन हो जाने की इच्छा तनिक भी नहीं रहती है, क्योंकि ऐसे विलीन होने से हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। और भक्त तो भगवान की सेवा ही सदैव करना चाहता है। ऐसे नहीं है कि मुक्ति होने के बाद हम सेवा बंद कर देंगे और हम भगवान हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो भगवान है वो हमेशा भगवान रहेंगे, वो हमेशा भगवान थे, और जो भगवान नहीं है वो कभी भगवान बन नहीं सकते, चाहे तपस्या करके, चाहे मतदान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे उनका ऐश्वर्य हो, धन हो, कुछ भी करने से जो व्यक्ति भगवान नहीं है वो कभी भी भगवान बन नहीं सकता है। ये एक निश्चित बात है जो शास्त्रों का निष्कर्ष है। इस बात को हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। केवल भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा कोई भगवान नहीं है। भगवान के अलावा जो भी है उनका स्वरूप है कि वो भगवान की सेवा करें, भगवान का दास बने। तो इसलिए भक्त इस सत्य को जानते हैं, उनका स्वरूप क्या है वो भली भांति जान लेते हैं, इसलिए कभी भी भगवान के दिव्य शरीर में या उनके निराकार उजाले में, प्रकाश में लीन होना नहीं चाहते हैं। फिर भी ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान योग के पद से चलते हैं, जो भगवान की सेवा सदैव नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को निराकार ज्योति की प्राप्ति होती है। और जिन असुरों की हत्या या वध भगवान श्री कृष्ण करते हैं उनको भी ऐसे निराकार ज्योति की प्राप्ति होती है। तो भगवान के भक्तों की जो गति है वैकुंठ लोक, वो गति को प्राप्त करना तो आसान नहीं है, क्योंकि केवल शुद्ध भक्ति प्राप्त करने से ऐसे संभव होता है, लेकिन साथ साथ निराकार ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए थे कि शिशुपाल जो इतना द्वेषी व्यक्ति था, सबके सामने इतने अपशब्द कहे शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रति, फिर भी शिशुपाल को ऐसे गंतव्य स्थान कैसे प्राप्त हुआ जो कि ज्ञान योगियों को अनेक जन्मों की तपस्या के बाद ही प्राप्त होता है। वैसे शिशुपाल का जन्म भी बड़ा विचित्र है, जन्म से ही वो श्री कृष्ण को गालियां देता रहा। ऐसे महाभारत में वर्णन है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके तीन आंखें थी और चार हाथ थे, दिखने में बड़ा विचित्र था, और जन्म होने के बाद ही वो एक गधे की तरह आवाज करने लगा। तो माता पिता बड़े उदास हो गए, ये कैसा विचित्र पुत्र है, ये अशुभ है, तो उसे त्यागना चाहते थे, बच्चे को भिजवा रहे थे दूसरे जगह कहीं कि उसको त्यागा जाए, रखा जाए। लेकिन उस समय एक जिन प्रकट हुए वहां और जिन ने कहा कि ऐसे त्यागी मत इस बच्चे को, ये बच्चा आगे चल के बहुत शक्तिशाली होगा और इसकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति के कारण हो सकती है। और जब ये बच्चा उस व्यक्ति को देखेगा तो उसका जो तीसरा आंख है वो निकल जाएगा और दो आंखें रह जाएंगे जैसे एक साधारण मनुष्य के होते हैं। और जब ये व्यक्ति इस बच्चे को अपनी गोद में लेगा तो उसके जो अधिक दो हाथ हैं वो भी निकल जाएंगे, इसके केवल दो हाथ रह जाएंगे जो कि एक साधारण मनुष्य के होते हैं। तो शिशुपाल के पिता का नाम था राजा दमघोष। वैसे दमघोष की पत्नी वो भगवान कृष्ण की माता की कुंती की माता देवकी की बहन थी। इसे दोनों चचेर भाई थे शिशुपाल और कृष्ण। तो राजा दमघोष ने सारे राजाओं को बुलाया और दिखाया बच्चे को, लेकिन बच्चे का तीसरा आंख रहा वैसे का वैसे। तो उन्होंने सोचा कि इनमें से कोई मेरे बच्चे की हत्या का कारण नहीं बनेगा। और उस समय कृष्ण और बलराम भी वहां आ पहुंचे। तो जब वो आए और जैसे ही शिशुपाल ने श्री कृष्ण का दर्शन किया तो वैसे ही तीसरा आंख निकल गया। फिर राजा दमघोष ने शिशुपाल को कृष्ण की गोदी में रखा और जैसे ही गोदी में रखा अधिक दो हाथ निकल गए। उस समय शिशुपाल की जो माँ है वो श्री कृष्ण के पास आई करपथ अवस्था में प्रार्थना करने लगी कि हे कृष्ण, आप मुझे ये वचन दीजिए कि मेरे बच्चे की हत्या आप नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि ठीक है, पूरी तरह से तो आपके मैं इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, परंतु मैं उस समय तक इसकी हत्या नहीं करूंगा जब तक ये मुझे लगातार 100 बार अपशब्द नहीं कहता है। तो कम से कम इतना तो है। तो ठीक है, माँ भी थोड़ी बहुत संतुष्ट हो गई। लेकिन बचपन से ही इसके पहले कि शिशुपाल कुछ ठीक ठाक बोलने सीखे तब से वो कृष्ण को अपशब्द कहने लगा, लेकिन एक साथ 100 नहीं बोले इसलिए बचा रहा, बड़ा हुआ। और जब ये राजसूय यज्ञ में उसकी ईर्ष्या जो हृदय में भर के बाहर निकली और वो सह नहीं कर पाए कि श्री कृष्ण को इतना सम्मान मिल रहा है, तो वो एक के बाद एक श्री कृष्ण को गालियां देता रहा। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है या द्वेष करता है तो उस दूसरे व्यक्ति को सम्मानित होते हुए सह नहीं कर सकता है, ये दुनिया की रीत है। इसलिए दुनिया में लोग इतना जलते हैं एक दूसरे से, इसलिए एक दूसरे को इतना नीचा खींचना चाहते हैं। जब हम भगवान के भक्त नहीं होते हैं तो एक दूसरे के प्रति ऐसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं और एक दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आजकल दुनिया की हालत ऐसी है, लोग केवल स्वार्थी बने जा रहे हैं, कोई भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता। तो शिशुपाल की तरह सभी बन रहे हैं, इसलिए द्वेष बढ़ रहा है। तो खैर, राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण बड़े शांति से सुनते गए, रुके, एक दो गालियां, तीन गालियां, चार पांच छह सात। शिशुपाल तो बस एक ज्वालामुखी की तरह उनके मुख से वो गरम गरम गालियां निकल रही थी एक के बाद एक कृष्ण के बारे में बोले जा रहे थे। कृष्ण बड़े आराम से रुक रहे थे और जैसे 100 तक पहुंचे तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और हत्या कर दी शिशुपाल की। और उस समय शिशुपाल की आत्मा आके श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हुई और आगे चल के और एक जो गति प्राप्त हुई जो शुक्रदेव गोस्वामी पर बताना चाह रहे थे या नारद मुनि बताना चाह रहे थे महाराज युधिष्ठिर को। तो फिर जब ये प्रश्न पूछा महाराज युधिष्ठिर ने कि ऐसे क्यों हुआ और कैसे हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने फिर वही बात कही कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर दिव्य है, कोई व्यक्ति द्वेष कर सकता है जिसका भौतिक शरीर है। जिसका भौतिक शरीर है वो तो अन्यों से द्वेष करेगा ही, जब तक कि वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बने। भगवान श्री कृष्ण ऐसे द्वेष भाव में सदैव से सदैव मुक्त रहते हैं, उनकी चेतना उनके लिए द्वेष करना संभव है ही नहीं, पक्षपात भी करना संभव नहीं है, क्योंकि पक्षपात द्वेष आदि ऐसे ही लोग करते हैं जिन्होंने भौतिक देह को स्वीकार किया है। और भगवान श्री कृष्ण इतने शुद्ध हैं कि जो द्वेषी व्यक्ति भी उनके प्रति द्वेष करता है, क्योंकि द्वेष का जो केंद्र बिंदु है, द्वेष का विषय कृष्ण है, तो द्वेष करके करके भी वो शुद्ध हो जाता है। और जब श्री कृष्ण उसका संहार करते हैं तो व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध होकर वो परम गति को प्राप्त कर देता है। तो नारद जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आप पांडव बड़े स्नेह के कारण, श्री कृष्ण को अपना भाई मानने के कारण आपका जीवन सफल हो गया है। ऐसे स्नेह के द्वारा आपने कृष्ण का चिंतन मनन किया है और आपका जीवन सार्थक हो गया है। हम जैसे साधारण भक्त, नारद जी कहने लगे, भगवान की सेवा और भक्ति करके अपना जीवन सार्थक कर चुके हैं। ऐसे वृंदावन की गोपियों ने कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर कृष्ण की सेवा करके उनका जीवन सफल कर दिया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जैसे कंस के भय के कारण कंस का मन सदैव कृष्ण में केंद्रित रहता था, और इसलिए जब श्री कृष्ण ने कंस की हत्या की तो कंस का भी उद्धार हो गया। साथ साथ शिशुपाल भी वह या ईर्ष्या की भावना रखता था श्री कृष्ण के प्रति, और ये भावना चाहे वो भय की हो या ईर्ष्या की हो, वैर की हो, वो भावना इतनी शक्तिशाली होती है कि ऐसे भावना में व्यक्ति दूसरे के बारे में जिसके प्रति वो द्वेष कर रहा है, भयभीत हो रहा है, उसके बारे में इतने तीव्रता से स्मरण करते हैं कि कभी कभी साधारण भक्ति करने से भी ऐसी तीव्रता प्राप्त नहीं होती है। कंस के बारे में भी हम ऐसे देखते हैं, कंस उठते बैठते सोते जाते खाते पीते कृष्ण के बारे में सोचता है, पानी पीते समय ग्लास में देखा अरे कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, सोने लगते हैं सपने में कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, भोजन में कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, जहां भी जाते वहां कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण से इतना भयभीत हो गए कि उनका सारा चित्त कृष्णमय हो गया। उसी प्रकार से शिशुपाल भी इतना ईर्ष्या करता था कृष्ण से कि जहां भी जाता वहीं कृष्ण का ही दर्शन करता, कृष्ण का ही स्मरण होता। तो ऐसी तीव्रता के कारण कृष्ण ने उनकी हत्या कर ली। असुर बनना है तो ऐसे असुर बनना चाहिए, साधारण असुर बन के जाएंगे जैसे राजा वेन तो वो तो नरक में चले जाएंगे। इसलिए हमें जानना चाहिए कि यहां जो नारद जी बोल रहे हैं, इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति करने के बजाय हमें भगवान से द्वेष या ईर्ष्या करने के लिए सीखना चाहिए, इससे हमारा भी उद्धार हो जाएगा, नहीं। वो कहना चाहते हैं कि ऐसे कोई विशेष व्यक्ति होते हैं जिनकी ईर्ष्या या जिनका द्वेष इतना तीव्र होता है, फिर भी भगवान उनका उद्धार कर ही देते हैं, क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि कम से कम ही मेरा चिंतन कर रहा है। और भगवान उनकी हत्या जब करते हैं तो उनके हृदय में जो बुरी भावना है द्वेष वैर की, उसको स्वच्छ करके जो भी शुद्ध भावना रहती है उसके द्वारा उसे मुक्त कर देते हैं। तो भगवान पक्षपात नहीं करते, जिनकी हत्या करते हैं उनका भी उद्धार करते हैं, ऐसे नारद जी बताए। इसलिए महाराज वेन को नरक जाना पड़ा, क्योंकि वेद ने कभी इस तरह से स्मरण नहीं किया भगवान का जैसे कंस और शिशुपाल कर रहे थे। इसलिए वंश जो वेद राजा की गति नरक हुई और शिशुपाल की गति मुक्ति हो गई। तो हे राजन, और एक रहस्य में बात आपको बता रहा हूं। नारद जी कहने लगे कि ये जो शिशुपाल है और इसके भाई दंतवक्र है, ये कौन है वास्तव में? ये वास्तव में वैकुंठ जगत में भगवान के द्वारपाल है जिनका नाम था जय और विजय। जब चतुष्कुमार वहां पर गए तो इन द्वारपालों ने इन चार मुनियों को देखा जो ब्रह्मा जी के वरिष्ठ पुत्र हैं, परंतु स्वेच्छा से अपने आप को उन्होंने केवल 5 वर्षीय बालक के रूप में रखा है। इन बालकों को देखकर साधारण बच्चे समझकर द्वारपालों ने उनको रोक दिया और चतुष्कुमारों ने फिर उनको श्राप दे दिया कि ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव वैकुंठ के द्वार में कैसे आया? वैकुंठ में तो ऐसे ही लोग होने चाहिए जो द्वेष ईर्ष्या आदि से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि आपके हृदय से ये गलत धारणाएं चली नहीं गई हैं। इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आपको 3 जन्म यहाँ लेने पड़ेंगे भौतिक सृष्टि में और भगवान के शत्रु आप बनोगे। तो तुरंत जय और विजय का पतन हो गया। ये तो पतन का एक बहुत विशेष उदाहरण है। तो जैसे उनका पतन हुआ तो सबसे पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का हुआ, नारद जी कहने लगे। और हिरण्याक्ष की हत्या वराहदेव ने की और हिरण्यकश्यप की हत्या भगवान नरसिंह ने की। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के प्रति बहुत हिंसा की, बहुत यातनाएं प्रहलाद को दिए, तब भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। जब दोनों का वध हुआ, उनका अगला जन्म हुआ त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो भगवान ने उस समय राम का रूप लेकर दोनों की हत्या कर ली और तीसरे अवतार में या तीसरे जन्म में हे राजा युधिष्ठिर, यही जय और विजय अब तुम्हारे चचेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो जब श्री कृष्ण ने इन दोनों की हत्या की तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि इन दोनों को उन्होंने स्वधाम भेज दिया है जहां से वो आए थे, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो महाराज युधिष्ठिर को अपना पूरा प्रश्न का उत्तर दे गया, महाराज परीक्षित को भी अपने किए हुए प्रश्न का उत्तर मिला कि भगवान कृष्ण कभी पक्षपात नहीं करते हैं, यहां तक कि जब असुरों की हत्या करते हैं तो उनको मुक्त करा देते हैं। फिर राजा परीक्षित के मन में यह प्रश्न हुआ कि ऐसा क्यों हुआ कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की हत्या कर ली या प्रयत्न किया पुत्र की हत्या करने के लिए? वैसे संसार में देखा जाता है कि पिता अपने पुत्र से बहुत स्नेह की भावना रखता है और वो भी जब बच्चा छोटा होता है 5 साल का तो स्नेह तो बहुत ज्यादा होता है। तो कौन सा पिता है जो अपने 5 साल के बच्चे की हत्या करना चाहेगा? तो इसके पीछे क्या कारण था? तो फिर शुक्रदेव गोस्वामी, हिरण्यकश्यप, नरसिंह देव और प्रहलाद की कथा आरंभ करते हैं। तो ये सारी नरसिंह देव भगवान के प्राकृतिक की लीला के पीछे ये सारी बातें हैं। फिर शुक्रदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार हिरण्यकश्यप ने बहुत तपस्या की अनेक वर्षों तक, ऐसी तपस्या की कि कोई भी नहीं कर सकता है। एक पैर पर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को उठाकर सूरज की ओर देखते रह गए, न पानी पिया न भोजन खाया, यहां तक कि सांस लेना भी बंद कर दिया और उनके सांस, उनके प्राण जो है हड्डियों में थी, जैसे हिरण्यकश्यप की तपस्या बढ़ती रही वैसे वैसे देवतागण चिंतित होते रहे कि अब ये ज्यादा तपस्या करेगा तो ब्रह्मा जी से कोई वरदान मांगेगा, क्योंकि इसकी प्रकृति ठीक नहीं है, ये दुष्ट व्यक्ति है। तो अपनी तपस्या से जो उसको वरदान मिलेंगे, जो बल प्राप्त होगा, उसके द्वारा वो हम सबको बहुत परेशान करेगा, वो बहुत अत्याचार और अन्याय करेगा। तो वो चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी जरा शीघ्र ही आप समस्या का समाधान कीजिए, कि हिरण्यकश्यप ने ऐसी तपस्या की है कि उसके उसकी जो इच्छाएं हैं या जो इरादे हैं वो ठीक नहीं है, तो आप वहां शीघ्र ही जाइएगा। तो ब्रह्मा जी चले गए। पहले तो हिरण्यकश्यप को ढूंढ निकाल नहीं पाए, फिर अंततः देखा कि एक वाल्मीकि है, चींटियों ने बनाया हुआ पहाड़ है और उसके भीतर हिरण्यकश्यप है। उसकी सारी जो भी मांस आदि है, चर्बी है, सब चींटियों ने कीड़ों ने खा ली थी, केवल हड्डियां बची थी और फिर भी प्राण हड्डियों के बीच में घूम रहा था। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हो गए और अपने कमंडल से जल लेकर उस शरीर के ऊपर छिड़का दिया और वैसे ही तुरंत हिरण्यकश्यप का शरीर बहुत तेजस्वी और शक्तिशाली हो गया और बहुत सुंदर भी हो गया। वज्र को सहन करने की शक्ति हिरण्यकश्यप के शरीर में आई। ब्रह्मा जी के सामने आके प्रणाम किया, ब्रह्मा जी की खूब स्तुति कर ली और फिर ब्रह्मा जी ने जब कहा कि तुमने जिस प्रकार से तपस्या की है हिरण्यकश्यप, ऐसी तपस्या तो आज तक ब्रह्मांड के इतिहास में किसी ने भी नहीं किया, न कोई कर सका, यहां तक कि भृगु मुनि जैसे तपस्वी ऋषियों ने भी ऐसी तपस्या तो नहीं की, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं मृत्यु से सुरक्षा चाहता हूं, मैं अमर बनना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैं भी अमर नहीं हूं, तो मैं कैसे तुम्हें अमर बना सकता हूं, कुछ और पूछो। हिरण्यकश्यप ने अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझा, सोचा कि ब्रह्मा जी इस तरह से मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे रहे हैं, तो मैं उस तरफ से टेढ़े ढंग से मैं इसी वरदान को प्राप्त करते ही रहूंगा। तो फिर हिरण्यकश्यप ने अनेक शर्त लगाना शुरू कर दिया और कहा कि ठीक है, आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न तो स्वर्ग में होगी न पृथ्वी में होगी, मतलब जमीन में नहीं होगी न आसमान में होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मेरी मृत्यु किसी पशु के द्वारा नहीं होनी चाहिए न किसी मनुष्य के द्वारा होनी चाहिए। हिरण्यकश्यप ने इसलिए पूछा क्योंकि एक शुकर का रूप लेकर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, इसलिए हिरण्यकश्यप ने पूछा कि न पशु न मनुष्य को ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो मेरी हत्या करे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, न दिन में न रात में मेरी मृत्यु होनी चाहिए, ठीक है, न घर के अंदर न घर के बाहर मेरी मृत्यु होनी चाहिए, चलो ठीक है, न हाथों से न अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु होनी चाहिए, चलो ठीक है, न दिन में न रात में मेरी मृत्यु होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे पूछते पूछते जितने जो भी बुद्धि थी हिरण्यकश्यप की सारे शब्द डाल दिए और ब्रह्मा जी तथास्तु कहते गए और फिर ब्रह्मा जी वहां से निकल पड़े। इसके पहले हिरण्यकश्यप में जितनी योग सिद्धियां हैं, जितने भी शक्तियां हैं ब्रह्मांड के भीतर जिनके द्वारा अन्यों के ऊपर वश प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे शक्तियों को भी प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी फिर अपने ब्रह्मलोक में वापस चले गए। उधर हिरण्यकश्यप को ऐसी शक्ति मिल गई, घमंड बढ़ गया और सारे ब्रह्मांड ने उनका उत्पात करना शुरू कर दिया, सबसे पहले गए देवलोक में, इंद्रदेव को वहां हटा दिया। इंद्रदेव कहा कि अभी आप जा सकते हैं, अभी हम यहाँ रहेंगे, आपकी गद्दी में हम बैठेंगे। सारे देवताओं से कह दिया कि अभी आपकी नौकरी चली गई, अभी आपको बाहर जाना है, सारा काम मैं ही संभाल लूंगा, चले जाओ। तो सारे देवतागण बेचैन हो गए, उनके राज्य से, उनके लोक से, उनके घरों से बाहर भेजे गए। हिरण्यकश्यप ने सारे तीनों लोगों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लिया और सारे प्रकृति के नियमों को उल्टा पुल्टा कर लिया और अपनी शक्ति असीमित समझकर किसी के प्रति भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। ऋषि मुनियों को या ब्राह्मणों को हो या वैष्णवों को हो, देवताओं को हो, सबके साथ उन्होंने बुरा व्यवहार किया। ऐसे काफी समय बीता गया, असुरों की शक्ति बढ़ती गई क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के द्वारा हिरण्यकश्यप सुरक्षित था। और सारे देवतागण फिर से ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी आपने क्या कर दिया, देखिए आपके वरदान के कारण ऐसे हो गया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हाँ बड़ी विकट समस्या है, तो चलो जाते हैं हम भगवान विष्णु के पास। क्षीर सागर के तट में गए, भगवान ने कहा चिंता नहीं करना, मैं शीघ्र प्रकट हो जाऊंगा। जब ये हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद के प्रति अन्याय करेगा, उनको यातनाएं देगा, तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। जब यहां तक बात बढ़ जाएगी, ऊपर तक आ जाएगी, जब यातनाएं दे दे के उसकी अपराधों की पूंजी पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाएगी, तब मैं प्रकट हो जाऊंगा और उसकी निजी अपने हाथों से मैं उसका वध कर दूंगा। अब आप बिल्कुल निश्चिंत होना। तो सारे देवतागण वहां चले गए, वहां से अपने शांत मन को शांत करके। उधर हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि मेरे जैसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है सारे ब्रह्मांड में। जो असुर प्रकृति के लोग रहते हैं वो इसी प्रकार से सोचते हैं, ईश्वरो हम अहम भोगी, कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही बलवान हूँ। और इस प्रकार से अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और जो उनके रास्ते में आता है उनको अपना शत्रु समझ लेते हैं, उनके साथ वैर उत्पन्न हो जाता है, झगड़े होते हैं और इस प्रकार से मन की शांति भंग हो जाती है, अन्यों के लिए भी बहुत उत्पात हो जाता है। हिरण्यकश्यप ने अपना राज्य बढ़ाना चालू कर दिया, अत्याचार बहुत बढ़ते गए, उनके पुत्र प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। प्रहलाद महाराज का स्वभाव पिता से बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त थे। प्रहलाद महाराज जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो उस समय नारद मुनि ने माता और बच्चे दोनों को भागवत धर्म का उपदेश दिया था। माँ भूल गई लेकिन प्रहलाद महाराज भूले नहीं। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा अन्य असुरों के बच्चों के साथ, तो प्रहलाद महाराज ने उनके सहपाठियों को विष्णु भक्ति के उपदेश दिए। सारे बच्चे वैष्णव बन गए, कृष्ण भक्त बन गए। ये देखकर गुरुजन हैरान हो गए, हिरण्यकश्यप को शिकायत की। हिरण्यकश्यप ने पहली बार तो इसको हल्का लिया, गंभीरता से नहीं लिया, चेतावनी दे दी गुरुजनों को कि सावधान रहना, कल मेरे शत्रु विष्णु के स्थान से कोई जासूस तो नहीं घुस रहे हैं हमारे राज्य में, जो ऐसी बातें, ऐसी बुरी बातें हमारे बच्चों को बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अच्छा असुर बनना चाहिए, लोगों को कैसे धोखा देना चाहिए, कैसे दुष्ट होना चाहिए, कैसे लोभी होना चाहिए, कामुक होना चाहिए, सब सीखना चाहिए। अच्छी अच्छी बातों को सीखने के बजाय ये सब भगवान की भक्ति की बातें सिखा रहे हैं कोई व्यक्ति, तो देखो कहीं भविष्य में ऐसे ना हो। लेकिन गुरुजनों के सावधान रहने पर भी प्रहलाद की भक्ति बढ़ती रही, उनका प्रचार बढ़ता रहा। अंततः हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया, प्रहलाद को बुलाया कि प्रहलाद, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरी शक्ति कितनी है? और मेरे आदेश का पालन करने के बजाय तुम मेरे शत्रु विष्णु का आश्रय ग्रहण कर रहे हो। तो प्रहलाद ने भक्ति करना छोड़ा नहीं। हिरण्यकश्यप जो अब तक निडर थे, अब उनके हृदय में थोड़ा डर उत्पन्न होने लगा, क्योंकि प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत बहुत प्रयास किया, पागल हाथियों के पैरों के तले कुचलाने का प्रयास किया, असफल हुए। हाथी कुछ भी नहीं कर पाए, बांध भी बका नहीं पाए प्रहलाद का, अग्नि में डालने का प्रयास किया, ऊंचे पहाड़ से प्रहलाद को नीचे फेंकने का प्रयास किया और किया भी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जहरीले सांपों के जहर से बचाने का प्रयत्न किया, फिर भी प्रहलाद को कोई हानि नहीं पहुंची। विष पिलाया और तरह तरह के शस्त्रों से प्रहार किया, लेकिन जो भी कुछ हिरण्यकश्यप क्यों न करें, प्रहलाद का एक बाल भी नहीं बचा। ऐसे सब देखकर हिरण्यकश्यप के हृदय में भय बढ़ने लगा। ये कौन है ये बच्चा? मेरा ही बच्चा है, परंतु ये बिल्कुल निडर है। मेरे से सारे देवलोक के निवासी भी कांपते हैं और ये बच्चा इतना निडर है, मेरे आदेश का पालन नहीं करता, मेरा विरोध करता है और उल्टा मेरे शत्रु की भक्ति करता है। तो ये शायद मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, ये संशय हिरण्यकश्यप के मन में उत्पन्न हुआ। प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद से कहा कि हे दुष्ट, हे दुर्विनीत, हे मंद आत्मा, ऐसे कई बुरे शब्द कहे, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, तुम इस तरह से बातें कर रहे हो कि मानो तुम मृत्यु को निमंत्रण देना चाहते हो। ऐसी बातें तो वही कहते हैं जो लोग मृत्यु के द्वार पर खड़े होना चाहते हैं। तो बताओ कि तुम ये सब शक्ति कहां से आ रही है कि तुम मुझ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना कर रहे हो और बिल्कुल नहीं डरे हो? कहां से ये शक्ति आती है तुम्हें? तो प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ के बड़े सौम्य स्वभाव से खड़े थे हिरण्यकश्यप के सामने। हिरण्यकश्यप उधर आग बबूले होकर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, धमकी दे रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज बड़े शांतिपूर्वक हिरण्यकश्यप के सामने खड़े रहे और वो कहने लगे कि हे पिता, आपका प्रश्न का उत्तर ये है कि जिस व्यक्ति ने आपको शक्ति प्रदान की है सारे ब्रह्मांड के ऊपर राज जमाने के लिए, जिस व्यक्ति के कारण सबको शक्ति मिलती है अपने अपने कार्य करने के लिए, उसी व्यक्ति ने मुझे भी शक्ति दी है जिससे कि मैं आपके सामने निडर होकर खड़ा हो सकता हूं। तो सभी शक्ति के स्रोत वही है, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के जो विरोध में जाते हैं उनका अवश्य विनाश होता है। हे पिताजी, आपके जैसे इतिहास में अनेक मूर्ख हुए हैं जिन्होंने भगवान का विरोध करना चाहा लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाए। आप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते हो, परंतु आप ये नहीं जानते कि भगवान सभी के शुभ चिंतक हैं और जो व्यक्ति अज्ञान में होता है केवल वही भेद करता है कि ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है। भगवान कभी ऐसे भेद नहीं करते हैं, भगवान सभी से प्रेम करते हैं। हे पिताजी, आपको जान लेना चाहिए कि हमारा सही और वाकई जो शत्रु है वो हमारा अनियंत्रित मन है। जब हमारी इंद्रियां और हमारा मन अनियंत्रित रहते हैं तो वो हमें बहुत कष्ट देती हैं। बंधुरात्मा प्रस्तस्य येनात्मा कृष्ण गीता में कहते हैं, यदि हमने हमारे मन को वश में कर लिया तो हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बनेगा, परंतु यदि हम मन को वश में नहीं कर पाए तो वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। तो प्रहलाद महाराज इसी तथ्य को कह रहे थे अपने पिता से कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है हमारा अनियंत्रित मन। हे पिताजी, तो भगवान विष्णु को अपना आप शत्रु क्यों मान रहे हैं या किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना शत्रु क्यों मान रहे हैं? आपका शत्रु तो आपके भीतर है, तो अपने मन को नियंत्रित कीजिए, आपकी इंद्रियों को नियंत्रित कीजिए, तब वास्तव में आप विजय प्राप्त कर पाओगे। सच्चा विजय अपने इंद्रियों और मन के ऊपर विजय होता है। हे पिताजी, सारे ब्रह्मांड का राज्य करने पर भी, युद्ध में विजयी होने पर भी, यदि व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है तो हमें जानना चाहिए कि वो हार चुका है, क्योंकि अंततः उसकी मृत्यु होगी, और जब मृत्यु होगी तो सारा ऐश्वर्य, सारी संपत्ति, ये सारे विजय ये किस काम के होंगे? इनका कोई मूल्य नहीं है पिताजी। इसे आप भी भगवान श्री विष्णु के, कृष्ण के शरण में आइए। तो अब हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया। तुम बार बार विष्णु 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 कह रहे हो, कहां है तुम्हारे विष्णु? तो हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार बाहर निकाली और कहने लगे कि यदि तुम्हें विष्णु में इतना ही विश्वास है तो चलो मैं देखता हूं कि विष्णु तुम्हारी रक्षा इस समय कैसे करते हैं। आओ मेरे सामने, कहां है तुम्हारे विष्णु? उस समय हिरण्यकश्यप ने देखा कि मैं इस प्रहलाद से बात कर रहा हूं लेकिन ये अब मेरी ओर नहीं देख रहा है, उस खंभे की ओर देख रहा है। तो और गुस्सा बढ़ गया प्रहलाद हिरण्यकश्यप का। तो बढ़ेगा ही ना, हम किसी से बात करते हैं और वो आके कहीं दूसरी ओर देख रहा है, और वो भी हिरण्यकश्यप के स्वभाव का व्यक्ति है, तो गुस्सा तो और ज्यादा होगा ही। तो फिर हिरण्यकश्यप ने खंभे की ओर देखा और कहने लगे कि कहां है विष्णु? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी भगवान विष्णु तो सब जगह है, सब जगह है। तो देखा कि खंभे की ओर देख रहे, खंभे में है विष्णु? तो प्रहलाद ने कहा अवश्य खंभे में है। हिरण्यकश्यप की दृष्टि भौतिक थी, हिरण्यकश्यप कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन प्रहलाद उस खंभे की ओर क्यों देख रहे थे? क्योंकि उस खंभे के अंदर वो अपने आराध्य देव भगवान को देख रहे थे, भगवान प्रकट हो चुके थे, परंतु हिरण्यकश्यप समझ नहीं पाए, अभी तक वो उस खंभे के भीतर ही थे। और बड़े भक्ति और प्रेम के नेत्रों से प्रहलाद महाराज हाथ जोड़कर भगवान का दर्शन कर रहे थे जो इस समय उस खंभे के भीतर थे। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या इस खंभे में भी है, प्रहलाद तो देख रहे थे सामने, आराम से किए थे, अवश्य है, खड़े हैं यहीं पे हैं। सत्यम विधातुं निज वृत्ति भाषितम्, अपने निज वृत्ति, वृत्ति मतलब सेवक प्रहलाद, भाषित मतलब उनके वचन। तो भगवान ने अपने भक्त के वचन को सत्यम विधातुं, सही सत्य साबित करने के लिए उस खंभे के अंदर प्रकट होना ठीक समझा। भगवान को उनके भक्त बहुत प्रिय होते हैं, जो भक्त कहते हैं भगवान उसको सत्य साबित कर देते हैं। इसीलिए जब प्रहलाद जैसे भक्त ने कहा कि हाँ भगवान सब जगह है, खंभे में भी है, भगवान वहां पर प्रकट हुए, तो हिरण्यकश्यप ने बड़े जोर से मुक्का प्रहार किया उस खंभे के ऊपर। और जैसे ही प्रहार किया, एक ऐसे भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई कि किसी को समझ में नहीं आया कि यह ध्वनि कहां से आ रही है। यह ध्वनि तो पहुंची सारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के कोने कोने में ये ध्वनि पहुंच गई और देवलोक में स्थित सारे देवतागण भी हिल गए। वो भी सोचने लगे कि ये क्या ध्वनि है, ये समय के पहले संहार कैसे हो रहा है सारे ब्रह्मांड का। सृष्टि के नाश के लिए तो अभी बहुत समय है, प्रलय का समय तो है नहीं। तो वो सब अपने अपने जगह में हिल गए और फिर वो समझ पाए कि अभी भगवान प्रकट हुए हैं हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। और शीघ्र वो सब आए, बादलों के पीछे खड़े होकर देख रहे थे कि अब क्या होगा, भगवान कहाँ पे हैं, कैसे प्रकट होंगे, कैसे हिरण्यकश्यप का वध करेंगे। और इस समय हिरण्यकश्यप भी इधर उधर देख रहे थे कि अब कहाँ से आवाज आ रही है। उस समय खंभा टूट गया और खंभे के भीतर से भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। नरसिंहदेव भगवान की जय। और जैसे प्रकट हुए, देखिए प्राकृतिक निशान बज रहा है हमारे रेलवे विभाग को भी फायदा मिल जाएगा ये भगवान के प्राकृतिक की उन्होंने कुछ सेवा की शंख बजा दिया। जय हो शंख बजा रहे हैं। तो खैर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा कि आंखों के सामने कौन है ये व्यक्ति, कुछ समझ नहीं पाए, बहुत गहराई से देखने लगे कि ये तो बड़े विचित्र हैं, ना ये पशु है ना ये मनुष्य है, ऊपर का भाग एक सिंह का है और नीचे का भाग एक मनुष्य का है। तो गहराई से देखने लगे, परीक्षा करने लगे इस प्राणी का, ये कौन है, ये तो विष्णु की कोई चाल लगती है, ये कौन है ये व्यक्ति। फिर नरसिंह ने भगवान नर और सिंह जोर से गरजने लगे और अपने हाथों को बाहर लेके आए सामने। हिरण्यकश्यप ने सोचा, पहले तो डर गए, फिर सोचा कि मेरे पास इतने वरदान है, शक्ति है, मुझे क्यों डरना चाहिए। तो अपना हौसला बढ़ाकर आक्रमण किया और कूद के गए सामने। शुक्रदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो अग्नि में प्रवेश करते हैं और दिखाई नहीं पड़ते उसके बाद में, ठीक उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप तेजी से आगे बढ़ा भगवान नरसिंह देव के ऊपर प्रहार करने के लिए। भगवान नरसिंह देव तेजस्वी थे, कोटि कोटि सूर्य के समान उनका तेज था, वो चमक रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे कोई कीड़ा जो है वो सीधा अग्नि में प्रवेश कर रहा है। और इसलिए जैसे हिरण्यकश्यप नरसिंह देव भगवान के शरीर के पास आए, कोई देख नहीं सका हिरण्यकश्यप को भगवान के तेज के कारण, लेकिन भगवान ने आसानी से हिरण्यकश्यप को उड़ा दिया। और शुकदेव जी वर्णन करते हैं कि जैसे गरुड़ जी कभी एक सांप को पकड़ते हैं, आसानी से भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। लेकिन कभी कभी गरुड़ जी सांप के साथ खेल भी लेते हैं, पकड़ के छोड़ भी देते हैं। तो हिरण्यकश्यप अपने सारी ताकत लगाकर प्रहार करते जा रहा था और जब भगवान के कर कमलों से छूट गया तो हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं, ये व्यक्ति मुझे पकड़ के नहीं रख पाया। वो समझ नहीं पाया कि भगवान ने जानबूझकर अपने खेल के लिए छोड़ दिया है। जैसे सांप कभी चूहे को पकड़ता है छोड़ देता है, पकड़ता है छोड़ देता है, गरुड़ जी भी कोई सांप को पकड़ के छोड़ देता है जानबूझकर, इसी प्रकार से भगवान ने हिरण्यकश्यप को छोड़ा था। लेकिन हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि मेरी शक्ति के कारण ऐसा हुआ है और हौसला बढ़ गया हिरण्यकश्यप का, अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया परंतु भगवान के सामने ये कुछ भी नहीं हुए, विफल हो गए सारे के सारे। अंत में देवतागण परेशान होते जा रहे थे कि समय बीतता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये राक्षस या असुर जो है बड़ा शक्तिशाली बन जाए और फिर हम सबका क्या होगा, सारे ब्रह्मांड का क्या होगा। देवताओं की चिंताओं को समझ के भगवान नरसिंह देव ने सोचा, चलो बहुत देर खेल लिया, अब इसके कोई समाप्त करने पे है। तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठा लिया बड़े आसानी से, गरजते गरजते ऐसे गर्जना कर रहे थे कि सारा ब्रह्मांड हिल रहा था। और बीच बीच में जब वो हंसते थे तो उनकी हंसी जो थी वो ऐसे एक चीख के समान थी जिसको सुनकर हिरण्यकश्यप जो आंखें बंद कर लेता था डर के मारे, वो सहन नहीं हो रहा था। और भगवान का रूप इतना भयंकर लग रहा था, उनकी आंखें क्रोध के मारे पिघले हुए सोने की तरह लग रही थी जो अभी उबल रहा है, उनके सफेद बाल इधर उधर उड़ रहे थे और उनके मारे बालों के कारण जो है सारे बादल भी बिखर रहे थे और अपने गर्दन को ऊंचा नीचा करके वो गरजते जा रहे थे। ऐसा एक साथ में सुंदर और भयंकर दृश्य था हिरण्यकश्यप के लिए, भयंकर दृश्य, भयानक दृश्य। परंतु प्रहलाद बड़े आराम से सब चीजों को देख रहे थे, प्रहलाद को कोई भय नहीं था। जिस प्रकार से एक सिंहनी का जो बच्चा होता है उसके लिए सिंहनी के जो दांत होते हैं, सिंहनी का संघ होता है, वो तो आश्रय होता है, परंतु वही सिंहनी अन्यों के लिए बहुत भयानक होती है। और यदि कोई व्यक्ति उस सिंहनी को बच्चे को आक्रमण करने के लिए आए तो सिंहनी का संघ कैसे होगा? लेकिन सिंहनी के बच्चे के लिए तो वो केवल सुरक्षा है। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज जब भगवान नरसिंहदेव को देखा तो उनके हृदय में केवल प्रेम, सुरक्षा, ऐसी भावनाएं थी। और हिरण्यकश्यप ने मूर्तिमान मृत्यु का दर्शन किया नरसिंहदेव के रूप में, और फिर बड़े आराम से नरसिंहदेव ने उठा लिया हिरण्यकश्यप को। वो महल के बाहर गए और महल की सीढ़ियों में बैठे और वहां अपने गोदी में हिरण्यकश्यप को बिठाकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वक्षस्थल फाड़ दिया, आसानी से फाड़ दिया। और इस तरह भगवान ने बड़े बुद्धिमानी से ब्रह्मा जी के वरदान को भी रखा और हिरण्यकश्यप का वध भी कर दिया। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान चाहा था कि न घर के अंदर न घर के बाहर मेरी हत्या होनी चाहिए, तो भगवान ने सीढ़ियों में बैठकर हत्या कर ली, जो न कि घर के अंदर है और न बाहर है। और ब्रह्मा जी को हिरण्यकश्यप ने यह भी पूछा था कि रात में नहीं दिन में भी नहीं, ठीक सूर्यास्त के समय नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, जो न दिन है न रात है। हिरण्यकश्यप ने यह भी पूछा था कि किसी अस्त्र से मेरा मेरी हत्या न हो, न किसी हाथ से हो, न किसी जीवित व्यक्ति से हो, न किसी मरे हुए व्यक्ति चीज से हो। तो भगवान नरसिंहदेव ने क्या किया, अपने नाखूनों का प्रयोग किया, जो न हाथ है न अस्त्र है न जीवित है न मरा हुआ है, नाखून है ये दोनों एक साथ में जीवित और मैं दोनों इसको मान रहे हैं एक साथ। तो भगवान ने नाखून से वक्षस्थल फाड़ के ब्रह्मा जी के वरदान को भी बरकरार रखा। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कोई पशु के हाथों न मनुष्य के हाथों से मेरी मृत्यु होनी चाहिए, परंतु भगवान नरसिंह रूप धारण करके न नर थे पूरी तरह से न पूरी तरह से पशु थे, ये कोई नया ही एक रूप था जो हिरण्यकश्यप ने कभी सोचा नहीं था अपने सपनों में भी ऐसे भी कोई व्यक्ति होके मेरी हत्या करेगा। तो जितनी भी चीजें हिरण्यकश्यप ने मांगी थी ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी से भगवान ने उनको जैसे वैसे बनाए रखा और फिर भी हत्या कर दी हिरण्यकश्यप का। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि भगवान से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। भगवान को तो यदि हम धोखा देना चाहते हैं तो भगवान से बड़ा धोखा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं। तो भगवान की युक्ति, भगवान की बुद्धि इतनी श्रेष्ठ है कि कोई बच नहीं सकता भगवान से। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि जिनको भगवान मारना चाहता है चाहते हैं वो कभी बच नहीं सकता, और जिनकी रक्षा भगवान करना चाहते हैं उनको कभी कोई मार नहीं सकता। तो हिरण्यकश्यप ने कितना कुछ प्रयास किया बचने के लिए, ब्रह्मा जी से भी वरदान इतने सारे ढेर सारे मांग लिए, वो पूर्ण भी हो गए, फिर भी भगवान को इच्छा थी कि इसकी मृत्यु हो और उन्होंने कर दिया। हिरण्यकश्यप दूसरी ओर प्रहलाद को मारने के लिए इतना प्रयत्न कर रहा था, इतनी शक्ति थी, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि प्रहलाद की हत्या न हो, इससे प्रहलाद बच गया। तो ये भगवान नरसिंह देव ने चमत्कार कर दिखाया। भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और अपने भक्तों के कष्ट को सहन नहीं करते हैं, इसलिए जब वो अपने प्रकट होने के कारण बताते हैं तो सर्वप्रथम यही कहते हैं परित्राणाय साधूना, फिर बाद में कहते हैं विनाशाय च दुष्टका। तो भगवान नरसिंहदेव का प्रकट होना ये हिरण्यकश्यप के वध करने के लिए नहीं था, ये प्रहलाद की रक्षा करने के लिए था। प्रहलाद के लिए भगवान आए, हिरण्यकश्यप के लिए नहीं आए, नहीं तो हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान के पास बहुत सारे रास्ते हैं, वो अपने भौतिक शक्ति के द्वारा ही वध करा सकते हैं ऐसे छोटे मोटे असुरों का, लेकिन अपने भक्त की रक्षा स्वयं वो करना चाहते थे। इतना प्रेम है भगवान का उनके भक्तों के प्रति कि वो अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करना चाहते हैं, अन्यों पर नहीं छोड़ते। वैसे देखा जाए तो भगवान का नाम सक्षम है भक्तों की रक्षा करने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान प्रकट हुए, ये है भगवान का स्नेह उनके भक्तों के प्रति। तो इस सुंदर लीला से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमारे भक्ति में हम प्रेरणा हम प्राप्त कर सकते हैं। नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप का वध करके फिर प्रहलाद महाराज को राजगद्दी में बिठाया और कहा कि अनेक वर्षों तक प्रबल इंद्रियों के द्वारा और शुद्ध चित्त के द्वारा तुम यहाँ राज्य करना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, और जब तुम्हारा राज्य समाप्त हो जाएगा लंबे समय के बाद तो फिर तुम मेरे धाम में वापस लौट के चले आना। इस प्रकार से प्रहलाद को पूरा आशीर्वाद भगवान ने दिया, प्रहलाद का जीवन सफल हो गया। तो आज इसी दिवस पर ये सुंदर और महत्वपूर्ण लीला हुई। भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों में हम भी प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि वो हमारे आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करें, हमारे भक्ति जीवन की रक्षा करें, हमारे हृदय में जो एक हिरण्यकश्यप नहीं अनेक हिरण्यकश्यप बैठे हैं जिनके नाम है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि, जो हमें भौतिक जगत में बांध के रख रहे हैं, जो भगवान से विमुख करा रहे हैं, ऐसे हमारे हृदय में बैठे हुए असुरों का वध वो शीघ्र कर दे और उनके चरण कमलों में हमें एक स्थान दे, उनके प्रति शुद्ध भक्ति की भावना हृदय में प्रदान कर दे। ऐसी प्रार्थना हमें आज भगवान नरसिंहदेव के प्राकृत दिवस के ऊपर करनी चाहिए, और अवश्य क्योंकि वो बहुत कृपालु हैं वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, हरे कृष्णा। क्या आपके कोई प्रश्न है? एक या दो प्रश्न काफी देर हो चुकी है, एक या दो प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, फिर अभी आरती होनी है और फिर प्रसाद है सबके लिए। की आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं तो कैसे सबको दिखाई पड़ा कि शिशुपाल की आत्मा निकल गई, क्योंकि आत्मा वैसे तो प्रकाशमान है, केवल हमें वो दृष्टि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सभी को दिखाना चाहते थे, इसलिए शिशुपाल की आत्मा जब आई तो वो प्रकाशमान रूप से आई, जैसे एक आकाश में कभी कभी दिखता है एक सितारा, उसको उल्का कहते हैं, कहते हैं झट से ऐसे चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से शिशुपाल की आत्मा को भगवान की योजना से, भगवान की इच्छा से सभी लोग देख पाए। नहीं तो साधारण तौर से ये ठीक है कि आत्मा जब प्राण शरीर को छोड़ती है तो हम देख नहीं पाते हैं आत्मा, पर उस सभा में भगवान की योजना से ये संभव हुआ। आखिरी प्रश्न, छोड़ दिया उन्होंने, मथुरा गए, मथुरा से द्वारका, लेकिन ऐसे वर्णन है शास्त्रों में कि दंत वक्र का वध किया उसके बाद विभु वृंदावन फिर से चले गए, तो दंत वक्र का वध का वर्णन भी श्रीमद् भागवत में आता है। शिशुपाल और दंत वक्र दोनों भाई ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर में आरती होगी, उसके बाद प्रसाद।